نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنا قرب دیا، اپنے آپ کو ہمارے سکون اور خوشی کا ذریعہ بنایا۔ ہم مسلمان اس لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا پہ چلتے چلتے اگر ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے لیں گے تو ہماری دنیا بھی خوبصورت ہوگی اور اسی طرح ہماری آخرت بھی خوبصورت ہوگی۔ آج کل ہم سیکرٹس آف ہیپینس کر رہے ہیں، آپ اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جو سیکرٹ مل گیا ہے، ہم مرتے دم تک اسی سیکرٹ کے ساتھ رہیں اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت والی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ مزید چیزیں جس کو میں اور آپ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں اور جس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بہترین خوشیاں عطا فرما سکتا ہے، بہترین طریقے سے ہم اپنے آپ کو لے سکتے ہیں۔ وہ کچھ ایسے یونیورسل لاز ہیں کہ جن تک پہنچنے میں ہر انسان اپنے آپ کو اگر کامیاب کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی کچھ دے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے وہ جملے ہیں کہ جن کو اگر آپ اور میں اپنی زندگی کے کوڈ بنا لیں، لکھیے کوڈز آف مائی لائف فرام ناؤ، آپ اس کو سیکرٹس آف پلیئر کہہ لیجئے، سیکرٹ آف ہیپینس کہہ لیجئے، اس کو خوشی کے قاعدے کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن اس سب کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے، اپنے اللہ پر اعتماد کیجئے، ٹرسٹ کیجئے۔ جب آپ اس جملے کو لکھیں، مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا ہے، کس کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں۔ شریعت جو اس نے دی وہ بہترین، جو حلال اس نے کہا وہ بہترین، جس کو اس نے حرام کہا وہ بدترین، نماز روزے سے لے کر دین کے ہر چھوٹے بڑے معاملے پہ چلنا میرا فرض ہے، یہی خوشیوں کے راز ہیں، فرائض کو ادا کیے بغیر ہمیں خوشی نہیں مل سکتی۔ اور آپ کا میرا اس پر اعتماد کہ میرا رب بگڑی بنانے والا، مغفرت کرنے والا، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں معاملات ہیں وہ کیسے غمگین ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، درگزر عام ہے، اللہ کی عطا صبح شام جاری ہے، توبہ قبول کرتا ہے اور اس کا حلم بہت بڑا ہے۔ تو غمگین نہ ہو، کیونکہ تقدیر اٹل ہے، جو لکھا گیا وہ ہونا ہے، قلم سوکھ چکا ہے، صحیفے لپیٹے جا چکے ہیں، اجر ملے گا، گناہ معاف ہوں گے۔ آپ جب ان چیزوں کو، ایک ایک لفظ کو، جملے کو صرف اپنی زندگی کے کوڈ بنا کے دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ ہے کیا چیز۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، حسن عمل اختیار کیجئے، امیدیں کم کیجئے، موت کا انتظار ہو ہر لمحے، ہم ڈرتے رہتے ہیں حالانکہ کرنی تھی تیاری، تو موت کا انتظار ہو، آج کا دن گزارو، اپنے کام سے کام رکھو، زمانے کو جانو، زبان کی حفاظت کرو، کتاب سے زیادہ کوئی فائدہ مند نہیں، قبر سے بڑا باعث نہیں، معصیت سے زیادہ اکتا دینے والا نہیں، زہد سے زیادہ شرف والی کوئی چیز نہیں، قناعت سے بڑھ کر ثروت نہیں، جتنا تمہارا حوصلہ صبر و ہمت ہوگی ویسے ہی تاریخ بنے گی، بڑا رتبہ یوں ہی نہیں مل جاتا، اس تحقیق پر ملتا ہے، لکھے گا اس جملے کو۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی میں بہت بڑے مرتبے مل جاتے ہیں، رتبے مل جاتے ہیں، ٹائٹلز مل جاتے ہیں، لوگ ہمیں کچھ کہنے لگ جاتے ہیں، ہم اکڑتے ہیں، ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھا میں بہت بڑی تھی نا تو مجھے لوگوں نے یہ کہا۔ مثلا کسی کو کوئی مس کہتا ہے، کوئی کسی کو میڈم کہتا ہے، کوئی کسی کو سر کہتا ہے، کوئی کسی کو ٹیچر کہتا ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے نام ہوتے ہیں۔ ایون ناموں میں بہت بڑا نام میرے پاس انصار اللہ ہونے کا ہے، اور ناموں میں ایک بڑا خوبصورت نام ذمہ دار ہونے کا ہے۔ ہمیں یہ لقب جب مل جاتے ہیں نا تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو خیر ہے، کیا بڑی بات ہے۔ حالانکہ دیکھیے، آپ کو مجھے آج تک کسی نے وزیر اعظم نہیں کہا، آپ کو مجھے کسی نے صدر نہیں کہا، آپ کو مجھے کسی نے بادشاہ نہیں کہا، تا तो लिखिए, बड़ा रुतबा यूं ही नहीं मिल जाता, हक की बुनियाद पर मिलता है। इस्तेहकाक, हक रखना पड़ता है, तलब करना पड़ता है। अलिफ सीन ता जब लग जाती है तो इसमें हक आ जाता है तलब के साथ। तो क्या पता चला कि जब आप और मैं हक वाले होते हैं, अपना हक साबित कर देते हैं, तो अल्लाह सुबहाना ताला फिर रास्ते भी खोल देते हैं और अगली बात कुर्बानी से हासिल किया जाता है। कुर्बानियों के बगैर बड़े रुतबे नहीं मिलते, अगर मिल भी जाएं तो एक झाग होती है और चंद ही दिन में झाग ठंडा हो जाता है। फिर अगली बात नोट कीजिए कि मामले को आसान समझोगे तो आसान होगा। बस आखिरत की फिक्र करो, अल्लाह की मुलाकात की तैयारी करो, हर फजूल चीज़ को छोड़ दो। इसलिए कि ये ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि आप और मैं इसको ज़ाया नहीं कर सकते। आपकी मेरी ज़िंदगी में अगर ज़ाया करने की कोई चीज़ होती तो याद रखिएगा वो ये ज़िंदगी ही होती। कितने ही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर लेते हैं, कितने ही लोग हैं जो अपने आप को दुखी करते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं। उनको नहीं पता होता कि सोने चांदी से ज़्यादा कीमती ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी और हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए उसको ज़ाया कर दें। बास लोग आराम के लिए ज़ाया कर देते हैं, बास लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ज़िंदगी को ज़ाया कर देते हैं कुछ अना की बातों की खातिर, अना परस्ती हो जाती है उनके अंदर। कुछ ऐसी और भी चीज़ें होती हैं, कोई और किसी बात पे, कोई किसी और चीज़ में। आप याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को एक नेमत, एक तोहफ़ा समझेंगे, अपने वक्त को देखेंगे, वो वक्त, वो चीज़, वो आपके लिए उतनी ही बड़ी नेमत हो जाएगी। तो ज़िंदगी में संजीदगी अख्तियार कीजिए, ये दुनिया ट्रायल एंड एरर नहीं है। सबसे बड़ी फ़िक्र क्या है कि आखिरत की फ़िक्र हो जाए। मामले को आसान समझोगे तो आसान होगा, बस आखिरत की फ़िक्र कर लो। अल्लाह ताला की मुलाकात की तैयारी करो, हर फजूल चीज़ को छोड़ दो। आई एम सो बिज़ी। भाई कहाँ बिज़ी, किधर जा रहे हैं, किससे मिलना है? मुझे अल्लाह से मिलना है। मन अहब लिका अल्लाही अहब अल्लाह लिकाहु। फिक्र है तो बस आखिरत की है, क्योंकि एक ऐसा भी खुशकिस्मत है जिसका जिक्र कुरान में कर दिया कि जिसको उसका नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा क्या कहेगा, हाउ मुकरो किताबिया। आओ देखो मेरा नाम अमाल तो देखो कितना हसीन है, इतने अच्छे नंबर आ गए मेरे, मुझे दाएं हाथ में मिल गया। लोग पूछेंगे भाई क्यों, क्वालिफिकेशन क्या थी, तुम करते क्या थे, व्हाट हैव यू डन। कोई लंबी बातें नहीं, नमाज रोज़ा जिक्र नहीं है, बड़ी बड़ी कुर्बानियों का नहीं, एक जुमला है। अगर आप जाके देखें सूरह अलहाका की आयतें, 29 पारे की थर्ड फोर्थ सूरह में से एक सूरत है ये, आप देखेंगे कि ये वो बात है कि जिसके ऊपर अगर ज़िंदगी गुजार दी तो सारे ही बारे न्यारे हो जाएंगे। और वो क्या है, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। मैं ये गुमान करता था कि मैं अपने हिसाब से मुलाकात करूंगा। तो दो बातें लिख लीजिए, मामलों को आसान समझेंगे तो आसान होगा, फिक्र आखिरत की कर लीजिए और तैयारी अल्लाह से मुलाकात की, और फिर हर फजूल चीज़ को छोड़ दें। बाकी सब चीज़ें इधर और उधर की हैं। फजूल मुबाहात परेशान कुन है। मतलब कुछ चीज़ें मुबाह हैं, मुबाह कहते हैं जायज़ को, हलाल, ओके, नॉट सिन नॉट गुड डीड, ना गुनाह है ना सवाब। मसलन बोलना, खाना पीना, मिलना जुलना, ये अपनी जगह एक नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन जब कलाम फजूल हो जाए, एक्स्ट्रा बोलना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा मिलजुल और ज़्यादा हंसना, ये सब गम का सबब है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो क्या पता चला आपकी मेरी ज़िंदगी ना तो बहुत ज़्यादा बोलने में गुजरे, ना बहुत ज़्यादा खाने में गुजरे, ना बहुत ज़्यादा सोने में गुजरे, ना बहुत ज़्यादा मिलजोल में गुजरे, और ना बहुत ज़्यादा हंसने में गुजरे, क्योंकि इन सब की कसरत गम का सबब होगी। देखिए ये जो लफ्ज़ फजूल है ना, उर्दू में हम अच्छा नहीं समझते, फजूल चीज़ें, फजूल कपड़े, फजूल नहीं, फजूल मीन फजल, एक्स्ट्रा। आप कहते हैं ना, हाज़ा मीन फजल रबी, ये अल्लाह का फजल है। बस वो फजल रबी को जहन में ले आइए, एक्स्ट्रा। अल्लाह आपको मुझे जो हमारे हक से ज़्यादा देते हैं ना, वो फजल होता है। तो अब आप बात करें लेकिन फजूल बातें, क्या हुई, एक्स्ट्रा बातें। आप खाना खाते हैं लेकिन फजूल खाना, ज़्यादा खाना, बात समझ गए होंगे। तो ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा हंसने बोलने की चीज़ ना समझे। दिस लाइफ इज़ नॉट अ पार्टी प्लेक्स, वी आर नॉट इन अ पार्टी हॉल, बल्कि ये दुनिया तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. میں اور آپ یہاں ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ آئے ہیں. اللہ نے مجھے آپ کو ایک بہت بڑا موقع دیا ہے. آپ کو مجھے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آخر ہم کرتے کیا ہیں, ہم اس دنیا میں کر کرا کیا رہے ہیں, ہماری زندگی میں اگر واقعی کوئی ہے چیز تو وہ کیا چیز ہے. اس کو دیکھنا ہے, اس پہ غور کرنا ہے. اکثر آپ پارٹی سے آئیں, بہت ہنس بول کر آئیں تو بعد میں دل اداس نہیں ہو جاتا. یہ ہے غم, یہ غم ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو مجھے اپنے حساب سے کنٹرول کرنی ہے. پھر اسی طرح اگلی ٹپ دیکھیے, تاکہ تم گزرے ہوئے پر افسوس نہ کرو, فلا تاسو لا ما فاتکم. لہذا حسرت و ندامت میں ڈوبو, رو رو کر بری حالت نہ بناؤ, چیخو پکارو نہیں. زندگی میں جو گزر گیا سو گزر گیا, جانے دیجئے, مٹی پاؤ. بہت سارے لوگ ماضی کے آئینے میں جیتے ہیں, ماضی کے آئینے میں ہی ہر وقت جھانکتے ہیں. جیسے گاڑی چلاتے وقت اگر آپ بیک مرر میں ہی دیکھتے رہیں گے تو کیا ہوگا, آپ کا حادثہ لازمی ہے. آپ دیکھیے کہ فرنٹ مرر بہت بڑا ہوتا ہے جبکہ بیک مرر چھوٹا ہوتا ہے. بس زندگی میں پیچھے مت دیکھیے, اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھائیے. آپ کو انشاءاللہ تعالی زندگی میں بہت ساری کامیابیاں ملیں گی. چیخنا پکارنا تو ہے ہی نہیں ہے. اور پھر ایک اور جملہ قرآن کا نوٹ کیجئے, تمہیں اللہ اور تمہارے اہل ایمان ساتھی کافی ہیں. اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا, تمہاری حفاظت کرے گا, تمہیں بچائے گا, بس خوف نہ کرو. دیکھیے جب آپ کو اللہ یہ یقین دلاتا ہے کہ حسبک اللہ, میں تجھ کو کافی ہوں, اور صرف اے نبی آپ کو نہیں آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی, پھر مسلمان کو ڈرنا چاہیے, پھر مسلمان کو خوف ہونا چاہیے. ڈپریشن, سٹریس, یہ مسلمانوں کے تحفے نہیں ہیں, یہ تو مسلمان کی ڈکشنری میں لفظ ہی نہیں ہوتے. وہ تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی خوش ہے, وہ تو آرام پہ بھی ہے تو بھی خوش ہے, وہ اگر کسی جنگ کے میدان میں تو وہاں بھی خوش ہے. شرط یہ کہ ہمارا ایمان اس قابل ہو. تو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا, ہماری حفاظت کرے گا, ہمیں بچائے گا, اس لیے خوف نہیں کرنا. مسلمان کی زندگی میں ڈر نہیں. آج کتنا ڈر ہے, ہائے یہ ہو گیا. اس دور میں جنگوں کا ڈر تھا, دشمن آ گئے ادھر سے آ گئے. آج کے دور میں جراثیموں کا ڈر ہے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ہولتے ہی رہتے ہیں. پریکاشنس لینا اچھی بات ہے, احتیاط بہترین چیز ہے, حکومت کے قوانین کو فالو کرنا اچھی چیز ہے, لیکن کیا آپ صبح و شام کی دعاؤں کو بھی پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کے نبی کے اس فرمان پہ بھی یقین ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تین دفعہ پڑھنے والا, اور بسم اللہ الذی لا یضرہ ما اسمی شیئن وهو السمیع العلیم. یہ جملے صبح و شام تین بار اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو احتیاط کیجئے, لیکن گھبرائیے نہیں, جو ہوگا وہ ہو جائے گا, جو ہونا ہے جو ہو کے رہے گا. آپ کو مجھے مطمئن جینا ہے, سکون سے رہنا ہے, خوشی کے ساتھ جینا ہے کہ میرے مالک میں تیرے سپرد کرتی ہوں خود کو. ہر وقت ہولنا, ہر وقت خبریں سننا, ہر وقت افواہیں پھیلانا, یہی تو لوگ چاہتے ہیں. یاد رکھیے آج بہت سارے خیر کے رستے بند کیوں ہو گئے, کیونکہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنے کی سازش کامیاب ہو گئی. مسلمان نہیں ڈرتا, وہ تو موت سے محبت کرتا ہے, اس کو کیا لگے. موت تو اللہ سے ملاقات ہے, پیارے پچھلوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے موت. اپنی ماں کو یاد کیجئے, باپ کو یاد کیجئے, کسی بچے کو یاد کیجئے جو آپ سے پہلے چلا گیا. آپ کی ملاقات ان سے اب صرف ایک ہی صورت میں ہوگی, اور جب آپ وہاں جائیں گے وہ واپس نہیں آ سکتے. تو یاد رکھیے کہ اللہ بندے کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یقین رکھیے. پھر ایک اور جملہ نوٹ کیجئے, بلا شبہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے, دشمنوں کو ان سے دور کرتا ہے, بلاؤں سے بچاتا ہے, بیماری سے شفا دیتا ہے, تنگی بدخالی میں ان کی حفاظت کرتا ہے. ان اللہ مع المتقین, کیا پتہ چلا. آج اگر ہم اللہ کی مدد سے دور دکھتے ہیں تو شاید وجہ یہ تو نہیں کہ تقویٰ کی کمی ہے, اللہ کے قانون تو نہیں بدلے. دشمن کل بھی تھے آج بھی ہیں, آج کیوں ہمارے دشمن ہمارے سر پہ دندناتے ہیں؟ اس لیے کہ تقویٰ کی کمی ہے. بلائیں پہلے بھی آتی تھیں, بیماریاں پہلے بھی آتی تھیں, تنگیاں تنگ دستیاں پہلے بھی تھیں, لیکن جتنا تقویٰ زیادہ تھا اتنی حفاظت زیادہ تھی. اور پھر اگلا جملہ نوٹ کیجئے, قرآن پاک کا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کیجئے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری سنتا ہے, دشمن پر ہماری مدد کرتا ہے, مشکلات کو آسان کرتا ہے, غمناک چیزیں دور کرتا ہے. جس کو اس کا یقین ہے وہ تو غار میں بیٹھ کر بھی مطمئن ہے. غار ثور میں یہ جملے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے بیچ میں ہوئے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے. کیوں رکھ دیے؟ اس لیے رکھ دیے کہ آپ کو مجھے یہ بات یقین سے معلوم ہو جائے کہ مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کا ساتھ دیتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے ساتھ کا یقین بندے کو خوش کر دیتا ہے. اور ایک اور جملہ لیجئے جو اللہ نے اپنے نبی کو کہا, الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ Didn't we open your chest؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو وسیع, کشادہ, خوش, مسرور, پرسکون, آباد اور مطمئن نہیں کر دیا؟ یہ ہوتا ہے ایک ایمان والے کا سینہ. اس کا دل کھلا ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے اندر, سرور ہوتا ہے, پیس ہوتا ہے. سب سے پیسفل جگہ رہنے کی اگر کوئی ہے آج دنیا میں تو ایک ایمان والے کا دل ہے. اس کے اندر سکون کتنا, اس کے اندر اطمینان کتنا ہے. آج ہم بے چین, پریشان, ایک مسئلے سے نکلے تو دوسرا, تیسرا, چوتھا, ایک پریشانی دوسری. اور باہر کی دنیا میں تو یہ رہتی ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ صحت مند ہیں تو آپ نیکی بہت ہیں, اور آپ بیمار ہیں تو گویا کہ آپ بہت ہی گناہ گار ہیں. ایسا تو نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ دل مطمئن, دل خوش, میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کرے گا, مجھے خوب جانتا ہے. تو لہٰذا اس سینے کے کھلنے کی دعا کریں. دعا اپنی زبان پہ رکھا کریں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جتنا زیادہ اس دعا کو پڑھیں گے اطمینان قلب آئے گا, انشراح صدر ہوگا, سینہ کھلے گا اور خوش اور مطمئن رہیں گے. پھر ایک اور جملہ لیجئے, ان کی چالوں سے تم حرج میں نہ پڑو. ہم ان کا مکر روک لیں گے, ان کی تکلیف تم سے روک دیں گے, اس لیے تنگ دل نہ ہو. آپ بتائیے کہ اکثر ہم اپنے ارد گرد والوں کی طرف سے بدگمان نہیں ہوتے, انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. گھریلو سطح پہ ہو تو سسرال ہی بہت ہیں خواتین کے لیے, کسی جاب میں ہے تو وہاں لیگ پولنگ ہے, اور حکومتی سطح پہ پہنچ جائے تو حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی چالوں کا غم نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ آج تو دین کے نام پہ بھی ہم دوسرے دین داروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتنے دشمنوں کے بیچ میں سے بھی نکال کر لے گیا. ہجرت کی رات یاد کیجئے تو پھر مان لیجئے, چالے کرنے والے, مکر کرنے والے چھوٹے ہیں اور بچانے والی ذات بہت بڑی ہے. چلیے ایک اور جملہ لیجئے قرآن پاک کا, نہ کمزور پڑو نہ غمگین ہو, فلا تہینو ولا تحزنو. نہ کمزور, نہ وہن آئے اور نہ غم آئے, کیونکہ شریعت اور عقیدے میں تم بلند ہو, منہج اور طریقے میں بلند ہو, بنیاد اور اصول اور اخلاق و سلوک ہر چیز میں تم بلند ہو. یعنی مسلمان بہت بڑی چیز ہے. اصل میں ہمارا حال ایسا ہے کہ ہمارے پاس سونے کا بڑا خوبصورت سیٹ ہے اور ہم اس کو نقلی سمجھے بیٹھے ہیں. ادھر رکھ ادھر رکھ, اس کو دے اس کو دے, ادھر چلا جائے گا ادھر چلا جائے گا, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے سبھی جانتے ہیں. اس کو ضائع کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی زندگی کو ہم بالکل ضائع کرنے کی طرف لگ جاتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی قدر کریں. اللہ نے ایمان والے کو بہت ہی زیادہ خوبیاں دی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا پیارا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور جملہ لیجئے, آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے, اِنَّ رَبَّكَ ذُو مَغْفِرَةٍ. جس کا رب اتنا بخشنے والا ہو پھر وہ اپنے گناہوں پہ پریشان, پھر وہ دکھی نہیں, وہ گناہگار کو معاف کرتا ہے, غلطیوں کو درگزر کرتا ہے, لغزشوں کو مٹاتا ہے اور برائی کو ڈھانپتا ہے, اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے. آپ کا میرا واسطہ بہت بڑی ذات سے. نعوذ باللہ, بعض لوگ صرف اپنی تنگ نظری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بڑا غصے والا, بڑا ہی تنگ دل والا اور ہر بات پہ ناراض ہونے والا پیش کرتے ہیں. خاص طور پہ مائیں بچوں کو جب کہتی ہیں اللہ مارے گا, پھر وہ کیوں مارے گا اس کو, وہ تو اس پہ رفع قلم کر چکا, اس کی تو باتیں نہیں ابھی لکھی جا رہی. تو یاد رکھیے, اللہ کی مغفرت کی امید میں گناہ نہیں کرنے, لیکن جو گناہ ہو چکے ہیں ان پہ اللہ کی مغفرت کی امید رکھتے ہوئے توبہ کیجئے, انشاءاللہ وہ آپ کی میری توبہ کو قبول کرے گا. اور ایک اور جملہ, سبحان اللہ, قرآن تو ہے ہی سارے سیکرٹس کھولتا خوشیوں کے. جس کو قرآن سمجھ آ جائے وہ کبھی ناراض نہیں ہو سکتا, وہ دکھی نہیں ہو سکتا. اور وہ جملہ کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کہ اس کی کشادگی قریب ہے, اس کا لطف جلد ہی آئے گا, اس کی آسانی ملنے والی ہے, اس کا کرم وسیع اور فضل عام ہے. ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। अपने रब की रहमत की उम्मीद रखिए। आपका रब आपसे प्यार करता है, आपका रब आपके साथ इतना प्यारा ताल्लुक रखता है कि अगर आज आपको उसका दोबारा यकीन आ जाए तो आप खुशी के उस राज को पालेंगे कि जिसके बाद फिर आप अकेले में भी मुस्कुराएंगे। हो सकता है इस वक्त आपका जिस्म दर्दों से भरा हो, चूर चूर हो, आप परेशान हो और सारे दरवाजे बंद। याद रखिए, इंसान को जरा सी तकलीफ आती है ना, सबसे पहले उसका माइंड नेगेटिव होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मसे माँ है, चार बच्चे हैं, सारा दिन उसके पीछे होती है, लेकिन माँ को दर्द सर लग गया और जरा सी साथ कुछ पेट में भी तकलीफ शुरू हो गई, जिस्म भी टूटने लगा। थोड़ी देर तो वो बच्चों को देखेगी, बाद में कहेगी इनको पीछे कर दो, मुझे इनकी आवाज़ें अच्छी नहीं लग रही, ये शोर कर रहे हैं, सब मुझे अकेले छोड़ दो, तनहा छोड़ दे मुझे। कभी ना कभी ज़िंदगी में आपके साथ ये फेज़ ज़रूर गुजरा होगा, उस वक्त ये कहिए ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। और एक और अगली बात भी नोट कीजिए, वो अरहमुर राहिमीन है, शिफा देता है, मुआफ़ी देता है, मुंतखब करता है, हिफाजत करता है, पर्दापोशी करता है, मगफरत फरमाता है और हलीम व करीम है। जी, अरहमुर राहिमीन सारे रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला। शिफा देता है, बिल्कुल देता है, डॉक्टर दवा देता है, शिफा अशाफी देता है, ये अल्लाह का नाम है। बंदा गुनाह करता है, मुआफ़ी अल्लाह देता है, मुंतखब करता है, वो चूज़ करता है आपको मुझे, हमारी हिफाजत करता है, पर्दापोशी करता है, हमारी मगफरत फरमाता है और वो हलीम और करीम है। तो हमेशा उस पर नज़रें रखाइए। आज से दुआ मांगिए, या अरहम राहिमीन अरहमनी, या अरहम राहिमीन, ऐर सबसे बड़े रहम करने वाले मुझ पे रहम फरमा, शिफा तुझसे लूँगी, मुझे डॉक्टरों के पास न ले जाना। यकीन करिए, 1, 2, 4, 6, 10 दिन अल्लाह खुद ही शिफा दे देता है, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें आती हैं। बस अल्लाह से ये कहा करे, अल्लाह मुझे मोहताज ना करना, अल्लाह मुझे बर्दाश्त दे दे, कुव्वत दे दे, और मेरा वो वक्त जो डॉक्टरों के पास लगना है उसको अपने रास्तों में लगवा दे, मेरा जो माल डॉक्टरों के पास जाकर खपना है उसको तू मेरे मालिक अपने रास्तों में लगा दे। और याद रखिए, एक बार दफ़ा हमारे कुछ कर्ज होते हैं, कुछ लेन देन चल रहे होते हैं अल्लाह के साथ, जब हम अल्लाह के हक़ में कहीं भी कमी करते हैं ना, जिसको आप डंडी मारना कहते हैं, अल्लाह किसी और को भेज देता है, जाओ तुम इससे वसूल करो। बहुत बड़ी बात बताने लगी हूँ, थोड़ी सी तवज्जो से रखिएगा। कभी आपने देखा होगा अपने मुल्कों में भी किसी ने एक का कर्ज देना है, वो दे नहीं रहा, बड़ी कोशिश करते हैं आप, मांगते हैं, वो सुनने को तैयार ही नहीं, इतने में आप किसी और को डालते हैं जो ज़रा ज़बरदस्त है और उसको निकलवाना आता है। वो सारा मामला सुन के देखता है कि आपके ऊपर जुल्म हुआ है, किसी ने आपका हक मारा हुआ है। वो उसके सामने जाकर कहता है, आज के बाद इससे नहीं मुझसे मांगना, इससे मैं निकलवाऊंगा। सभी को समझ आ गई होगी। वो कहता है, तुम्हें मैं देता हूँ, ये लो, तुम तो फारिग हो जाओ, इसको मेरे हाथ पर डाल दो, मैं इससे निकलवा लूँगा। कभी बिजनेस किए हों तो पाकिस्तान में रहते हुए आपको ऐसी चीज़ें बहुत मिल सकती हैं जिसमें वाकई के लोग फिर निकलवाते हैं। अब अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं, सिर्फ बात समझने की है। हम जब अल्लाह ताला के किसी हक में कमी करते हैं, माल नहीं लगाते जितना लगाने की ज़रूरत थी, वक्त नहीं लगाते जितना लगाने की ज़रूरत थी, और बाकी भी चीज़ें, अल्लाह ताला किसी डॉक्टर को भेजता है, जाओ इससे पैसे ले लो, किसी लॉयर को भेजता है, मुकदमा डाल देता है, जाओ भाई तुम इससे वो पैसा निकलवा लो। हम वक्त नहीं देते ना, तो अल्लाह ताला कोई ऐसी हमारे घर में मुसीबत डाल देता है कि उसी में सफाई सुथराई में वक्त सारा चला जाता है। अल्लाह को अपने काम कराने आते हैं, इसलिए उसका रहम मांगना है। ज़िंदगी भर सर सजदे में रख के कहना कि यार हम राहमीन रहमनी तो कम है। क्यों अल्लाह के नबी सजदे में दुआ करते थे, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, ऐ जिंदा ऐ थामने वाले, मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ। और फिर एक और जुमला, अल्लाह बेहतरीन मुहाफिज़ है, वल्लाहु खैरुन हाफिज़ा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के लिए ये जुमला बोला, सूरत यूसुफ पढ़ लीजिए, आपको भी मिल जाएगा। कैसे है बेहतरीन मुहाफिज़ अल्लाह? पहली बात है, गायब की हिफाजत करता है, बेवतन को वतन वापस करता और गुम करदा राह को हिदायत देता और मुबतलाए मुसीबत को आफियत देता है, मरीज़ को शिफा देता है और तकलीफ़ दूर फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीर। ये सारी बातें आपको किस्सा यूसुफ में तो मिल ही जाएंगी, लेकिन आम ज़िंदगी में भी देखिए, कभी बच्चा गायब हो जाता है, अल्लाह ऐसे उसकी हिफाजत करके उसको माँ बाप से मिला देता है। कभी कभी आप अपने वतन से बेवतन होते हैं, अल्लाह रास्ते बना देता है। आप हिदायत की राह गुम कर चुके होते हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे देता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तू हमारी भी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हमें वापस अपने रास्तों पे ले आ, ए अल्लाह तू वाकई हमें हमेशा की तरह अपने रास्तों में भागने दौड़ने वाला बना दे। याद रखिए कि बाज़ दफ़ा आजमाइशें तो आती हैं, वो चली भी जाती हैं, लेकिन हमारे हौसले छोटे हो जाते हैं। अल्लाह के नबी के दौर के लोग हर वक्त जंग से हौलते थे, दुश्मन चले गए, आप सूरत अहज़ाब पढ़िए, सारे दुश्मन आए मिल के सब, चलो आज एक ही दफ़ा मुसलमानों को ख़त्म करते हैं। वो आए, एक महीना बाहर रह कर सरहद पार ना करने के बाद चले गए, लेकिन अंदर बैठे मदीना में वो लोग जिनके दिल अभी अल्लाह के साथ पूरे नहीं जुड़े थे, वो कांप रहे थे, कहते नहीं नहीं जाके देखो अभी, नहीं नहीं हमारा दिल नहीं मान रहा, वो चले गए, देखना कहीं छुपे होंगे। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारा निफाक ना खुल जाए कि किसी आजमाइश और मुश्किल के वक्त में। इसलिए अगली बात लीजिएगा, अल्लाह ही पर तवक्कुल करो, वाल्लाह ही फल यतवक्कल, मामलात इसके हवाले कर दो, अपना हाल उसी से बयान करो, उसकी किफ़ायत और इसकी रियायत पर मुतमईन हो जाओ। सोने के पानी से लिखने वाला जो मुहावरा है ना, अगर वो सच्चा हो ना तो वाकई ये जुमले सोने के पानी से लिख लीजिए। इसलिए कि हम अपने मामले अपने हाथ में लेके फिर रहे होते हैं, तवक्कुल है कोई नहीं ज़िंदगी में, तो अपना हाल उससे बयान करना है। लोगों ने क्या देना है आपको मुझे? बाज़ दफ़ा हम उनके पीछे फिरते हैं जो हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम उनसे अपने दुख सुख करते हैं जो बेचारे सुन भी लेंगे तो क्या करेंगे, उनसे मदद मांगते हैं जो बेचारे खुद बड़े मजबूर हैं, उन्होंने अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखा हुआ है, लेकिन आप देखिए उसको नहीं पुकारते, उस पर तवक्कुल नहीं करते कि जो ना सिर्फ ये कि जानता भी है बल्कि फिर मानता भी है। तो अल्लाह के आगे अपने कहिए, यहाँ बैठ कर कहिए, अल्लाह मेरे सारे मामले तेरे सपुर्द, ऐ मेरे मालिक मैं तुझ पे तवक्कुल करती हूँ, ऐ अल्लाह तू जान तेरे काम। कभी कभी मैं अपने सारे काम में जो भी अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, बड़ी ऑनर है मेरे लिए, अल्लाह ने ऐसी प्यारी जिम्मेदारी दी है कि अल्लाह ताला बस हमें अम्बिया कराम के नक्शे कदम पे चलाए, क्योंकि ये काम तो अल्लाह ने अम्बिया कराम से लिया, वाज़ नसीहत तस्कीर इल्म ताल्लुम। और कभी कभी वाकई कोई चीज़ जब हाथ से बाहर जाने लगती है, वो इंसान खाम खान देशों में चला जाता, अल्लाह क्या बनेगा इनका, अल्लाह यहाँ क्या होगा, अल्लाह ये क्या करेंगे, अल्लाह ये वो, और एकदम जैसे ना वो मायूसी छाने लगती है, छोड़ दो फिर सबको, कुछ नहीं हो सकता। बस आप एक बच्चे को ही पढ़ा रहे हैं, माँ हाफिज़ बनाना चाहती है, बच्चा बनता नहीं, माँ कोशिश कर कर के आखिर कहती है अल्लाह मैं क्या करूँ, और मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ, मैं और किससे इसको पढ़वाऊँ, ऐसे वक्तों में रिलैक्स्ड, अच्छा फिर अल्लाह तू जान। ज़रूरी तो नहीं ना कि नेकी करो तो अजर मिलता है, कभी नेकी ना करने पर सब्र का भी तो अजर है ना, अल्लाह मैं तुझे सुपुर्द करती हूँ करके देखे, ऐसे रिलीफ फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर वक्त दिन में दिमाग में इर्द गिर्द बीसियों नहीं बल्कि अगर सैकड़ों भी कह दूँ तो मुबालगा नहीं होगा, प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हर जगह हमेशा खैर तो नहीं मिलती होगी ना, हर जगह कामयाबी तो नहीं, हर कोशिश पहली दफ़ा में तो नहीं कामयाब होती, एक एक चीज़ को आगे लाने में बहुत टाइम लगता है, एक एक मीडियम के बारे में फिक्र करते हुए गम लगता है, लेकिन जब मैं उसको अल्लाह पे डाल दूँ ऐसे लगता है कि अंदर बाहर और सुकून भर गया। तो आज से अपने मामले अल्लाह पे डालिए, उसी के सामने अपने दुख सुख रखिए, और एक और जुमला लीजिए, करीब है कि अल्लाह फतह लाएगा, असल्लाहु, उम्मीद है, करीब है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि फतह होगी, तो बंद ताले खोल दे, भारी बोझ हटा दे, लंबी अफसरदा रातें ख़त्म कर दे, शरे सदर कर दे, हालात की इसलाह कर दे। देखिए दरवाज़ा है, चाबी है, ताला है, खुल नहीं रहा, गाड़ी है, चाबी गुम गई, मायूसी है ना, भारी बोझ है, सब मिलके पत्थर हटा रहे, नहीं हट रहा, रात है कि ख़त्म होने को नहीं आ रही, लंबी लंबी रातें, और वो भी नॉर्वे की और सर्दियों की रातें। अब ऐसे वक्त में इंसान तो डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत सारे लोग सर्दियों में वाकई डिप्रेशन में चले जाते हैं नॉर्वे में, क्योंकि रात ही रात देख देख कर दिल बंद होता है, सुबह तो हो ही बहुत थोड़ी, ऐसे वक्त में आप कहिए करीब है कि अल्लाह फतह ले आए, बस देखिएगा ऐसे रोशनी फूटेगी, शरह सदर होगा, और आपके हालात की इसलाह हो जाएगी, आपने रब को साहिबे कुन फयाकुन कर दो। इस साल के दौरे कुरान में से छोटे छोटे जेम्स हैं, आपको इतने खूबसूरत टॉपिक दिखेंगे, 2 मिनट 3 मिनट, वो पहले पारे के जेम ही नहीं खत्म हो रहे साथियों ने कहा। हमने सोचा था हर पारे में से 10 जेम्स लेंगे, तो 20 हो गए, अभी भी पारा खत्म नहीं करने को दिल कर रहा, क्योंकि हमें तो ऐसे लगता है कि पूरे 3 घंटे जेम्स हैं, बस उसको ब्रेकअप कर करके छोटा छोटा करके पेश कर रहे हैं। तो उसमें मैंने एक जुमला भी पढ़ा कि तेरी कुन के मुंतजर हैं, तेरी एक कुन के मुंतजर हैं, क्योंकि अल्लाह साहिब कुन फयाकुन है। तो जब आपका अल्लाह इतना प्यार करता है तो फिर आपको मुझे मायूस होने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह ताला तो अपने मामलों को समेटने वाला है। तुम नहीं जानते कि हो सकता है कि अल्लाह इसके बाद कोई राह निकाले, ये कुरान का जुमला है, तुम्हें क्या पता है? अंतुम ला तालमून, और अल्लाह सैयद जलल्लाहु अन करीब है कि अल्लाह क्या कर दे, मिन अम्री ही युसरा, कामों को आसान कर दे। कितनी बातें हैं कुरान में। जिसको इस बात का यकीन हो कि तुम नहीं जानते कि हो सकता है अल्लाह इसके बाद कोई राह निकाले, और अगर आप गौर से सुने तो याद कीजिए कुरान में कहाँ है ये बात, सूरह तलाक में। तलाक के बाद भी अल्लाह खैर के रास्ते निकाल देता है। आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों मायूस हैं? और जब अल्लाह राह निकालता है तो गम ख़त्म हो जाते हैं, फिक्रें मिट जाती हैं, हुज़न के इजाले हो जाते हैं, मामले आसान हो जाते हैं, और दूर की चीज़ नज़दीक हो जाती है। एक दफ़ा इस बात को कह कर तो देखिए कि अल्लाह रास्ते निकालेगा। असल मज़ा तौहीद में है। मैं अक्सर ये जुमला बोलती भी हूँ और सोचती भी हूँ कि जो सबसे प्यारी दौलत जिससे लोग आज महरूम हैं, वो तौहीद से दूरी है, अल्लाह का तारुफ नहीं है। अस्माउल हुस्ना पढ़ते हैं, झूम झूम के पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह से वो ताल्लुक़ नहीं है। सज़ा काट रही है इंसानियत आज अल्लाह से दूरी की, वरना ईमान वाला तो मुस्कुराता ही रहे। अच्छा, यहाँ भी अल्लाह ने ये कर दिया। हाँ, वो है ना लतीफ़, है अल जब्बार, टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला, टूटे घरों को जोड़ देता है। अल्लाह ताला है जो बीमारियों को सेहत में डालता है। डॉक्टर जो मर्ज़ी कहते रहे, उनको क्या पता है कि जी अब इनका कोई इलाज नहीं, आप आराम से बैठिए, आप तो 5-7 साल पढ़ के डॉक्टर बने। अल्लाह तो है अल हकीम, वो फिर रास्ते निकालता है। लेकिन इस दौलत को पाने के लिए एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, जुगाड़ सहना पड़ता है, फोकस होना पड़ता है। दुनिया के धंधों से हटकर एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाना पड़ता है। क्या मेरे मालिक, मैं अपनी ज़िंदगी भर खुद भी तुझसे जुड़ूंगी और दूसरों को तुझसे जोड़ूंगी। फिर सब जो रोते धोते बंदा दूर बैठ के स्माइल देता है कि अल्लाह इनको कैसे बताऊं कि तुम्हारे पास बिजली की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, तुम्हारा घर नहीं छोटा, मसला यह है कि तुम्हारे पास ताल्लुक बिल्ला नहीं है। तो गमों को मिटाने वाला राज अल्लाह रास्ते निकाल देता है। और आपने कई टूटे घर जुड़ते देखे होंगे, बीमारों को सेहतयाब होते देखा होगा। चलिए एक और जुमला लीजिए प्यारे रब की शान में, हर रोज़ इसकी एक नई शान होती है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, सूरत अर्रहमान में सभी को आती होगी आयत कमोबेश। हर रोज़ उसकी एक नई शान होती है। कैसे? इस तरह कि वो तकलीफ़ दूर करता, गुनाहों की मगफरत करता, रोज़ी देता, मरीज़ को शिफा देता, मुबतला को माफ़ी देता है, कैदी को छुड़ाता है और टूटे को जोड़ता है। जी, मेरा रब बड़ा मसरूफ़ है, वो फारिग थोड़ी है। उसने तो एक एक मिनट टारगेट करके रखा हुआ है हमारी ज़िंदगी का। हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी में प्लानर नहीं है, हमारे टाइम टेबल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं जाना किधर गए, किधर आए, किधर किया क्या, लिया क्या, दिया क्या, कोई प्लान नहीं है। याद रखिए, हमारी ज़िंदगी अगर विदाउट प्लानिंग गुजर रही है तो उस मजदूर और मिस्त्री की तरह के नक्शा पास कोई नहीं, बस ईंटें जिधर दिल करता है जोड़ते हैं, और फिर दिन भर काम करके अगले दिन आकर कहते हैं नहीं ये तो ठीक नहीं, इसको काटो उधर लगा दो। ज़िंदगी की चांदी पिघल रही है, हर दिन जा रहे हैं। सोचिए तो सही, किसको पता है कल मेरे पास वक्त कितना है, मैं कितनी हूँ, कहाँ हूँ। लेकिन अपनी ज़िंदगी को प्लान करके गुजारिए, ट्रायल एंड एरर नहीं है हमारे पास। देखते हैं, सोचते हैं, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, मैं वो देख रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, भाई सॉरी मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं, मैं इतनी चीज़ों को देखूँ, मुझे सीधा देखना है। ट्रेन की तरह बनी है, बी फोकस्ड, पहुँच जाएंगे एक दिन किसी जगह। और अगर इधर उधर निगाहें दौड़ाते रहे, बिल आखिर एक दिन आएगा आपकी गाड़ी की चाबी आपके हाथ में होगी और आप बैठ नहीं सकेंगे। जितना डिस्ट्रैक्टेड होता है बंदा, चाहे खैर के कामों में क्यों ना हो, एक दिन आता है ओवर बर्डन होके सब छोड़ देता है। अल्लाह के नबी से सहाबी ने आकर पूछा, अल्लाह के नबी रोज़े रखता हूँ, इतने रख लूँ, इतने रख लूँ, इतने रख लूँ, करते करते कराते आखिर में जो बात आई वो ये थी कि पीर और जुमेरात का रख लो, चलो एक दिन रोज़ा रखो एक दिन छोड़ दो। और आखिरी उम्र में जब बुढ़ापा आया, कमज़ोरियाँ आईं, तो कहते थे कि कितना अच्छा होता मैं अल्लाह के नबी की उस बात को मान लेता, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब रखे तो आखिरी उम्र में नहीं रखेंगे तो फिर बोझ होगा, तो बोझ इतना क्यों लादा, अल्लाह तो गफूर और रहीम है, उसने तो महीने के 3 रोज़े भी काफ़ी कर दिए, उसने तो हफ्ते के 2 भी कर दिए, अगर आप कहते मुझे 4 और 5 रोज़े रखने हैं तो फिर रखिए, लेकिन याद रखिए आप इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए अगला जुमला लिखिए, बस उसर के साथ युसर है, फाइन्ना माल उसरी युसरा। जी, फ़क्र के साथ गिना है दौलत, मरस के बाद आफियत है, हुजन के बाद सुरूर है, तंगी के बाद आज़ादी है, और भूख के बाद शिकम सेरी है। बिल्कुल सच है, आज अगर आप किसी भी उसर में हैं ना, तंगी में, बीमारी में, परेशान है, डोंट वरी, आपका रब बहुत बड़ा है, वो आपको निकालेगा ऐसे जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है। ये तकलीफ, ये बीमारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, ये फकर, ये तंगी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि आप ताल्लुक बिल्ला की खुराक लेकर इस जगह से निकलेंगे। तो हमेशा याद रखिए, बाद नहीं है, माँ का लफ्ज़ है, बात नहीं, यानी यह चीनी है, फाइन बाद अल उसरी युसरा, बल्कि फाइन माल माँ मैयत, जैसे आप कहते हैं बिमा हलो याल के लफ्ज़ को जहन में रखिए, तो हर हालत बदलेगी इंशाल्लाह। आप क्यों दुखी हैं, अल्लाह ने आपको दुखी रहने के लिए तो नहीं भेजा, काम कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए, डोंट लूज होप। चलिए, अल्लाह उसर के बाद युसर लाता है, मुराद क्या है इससे, चंद जुमले लिखिए, बेड़ियाँ खुल जाएंगी, रस्सी टूट जाएगी, दरवाज़ा खुल जाएगा, बारिश बरसेगी, जो आज गायब है वो आ जाएगा, और हालात दुरुस्त हो जाएंगे। ये 6 जुमले हैं, कोई बेड़ी है तो खुल जाएगी, रस्सी है तो टूट जाएगी, बंद दरवाज़ा है तो खुलेगा, आज गर्मी है तो बारिश बरसेगी, गायब कोई है, कोई आपसे दूर चला गया, खो गया, बड़े दिन से नहीं देखा, आएगा एक दिन आपके सामने, गले लगेगा आपके, और हालात दुरुस्त हो जाएंगे। इससे बड़ी तो कोई टिप्स साइकाट्रिस्टों के पास नहीं है किसी को डिप्रेशन से बाहर लाने की, जो अल्लाह कुरान में देता है, ये है सीक्रेट्स ऑफ दी हैप्पीनेस, ये हैं खुशियों के कायदे, अल्लाह हमारा एतमाद बहाल कर दे। एक और जुमला लिखिए, फसबरुन जमील, बस सब्रे जमील है, ये भी सूरज यूसुफ में ही है। क्या कि हालात तब्दील होंगे, नफ्स को सुकून मिलेगा, शरह सदर हासिल होगा, मामला आसान होगा, गिरहें खुलेंगी, बहरान ख़त्म हो जाएगा। आप जब कहते हैं ना फसबरुन जमील, सब्र तो है, खूबसूरत सब्र, मतलब ये है कि मेरे हालात ज़रूर बदलेंगे, मुझे आज जो बेसकूनी है कल मेरे नफ्स को सुकून मिलेगा, शरह सदर हासिल होगा, मामले आसान होंगे, गिरे खुलेंगी, बहरान ख़त्म हो जाएंगे, बस तो फिर आपके तो मसले ख़त्म हो गए। चलिए एक और जुमला लीजिए, इस जिंदा पर तवक्कुल करो जो कभी नहीं मरता। जी, फल यतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमुत। हम मुर्दों पे रोते, उनको जाके कब्रों पे बैठ के रोने सुनाते, अपने दुख सुनाते, या जो माँ चली गई उसको याद करके रोते, बाप चला गया उसको याद करके रोते, शोहर चला गया उसको याद करके रोते, वो अल हय्युल कय्यूम ऊपर हस्ती, जो जिंदा है, जो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, दुनिया में हर बंदा चला जाता है, माँ बच्चों को छोड़ जाती, बच्चे माँ बाप को छोड़ जाते हैं, असल बात ये है कि आप ये देखिए कि अल्लाह की हस्ती कितनी प्यारी है कि जो बंदे को कभी तनहा नहीं छोड़ती, और हम उसको छोड़कर गैरों के दर खटखटाएं तो हमसे ज़्यादा ना समझ कोई नहीं है। और इसी तरह से जब अल्लाह हाल दुरुस्त कर दे, आपका दिल खुश कर दे, आपके माल की हिफाजत कर दे, तो आपकी खैरगिरी करने वाला वो है, आपका इंजाम अच्छा होगा, आपकी उम्मीदें बढ़ाएंगी। और एक और जुमला लिखिए, हमें अल्लाह काफ़ी है, वो बड़ा अच्छा कारसास है, हसबुनल्लाहु व नेमल वकील। सूरत निसा में भी है और भी बहुत जगह है कुरान में, हमारी तकलीफ़ें दूर करता है, मुसीबतें ख़त्म करता है, गुनाह माफ़ करता है, दिलों की इसलाह करता है, और हमारे अय्यूब की पर्दापोशी करता है। जब इतना प्यारा कारसाज़ आपके पास, जब वो आपको काफ़ी है, ही सफिशेंट टू यू, तो फिर बताइए हमारी गम, हमारी तकलीफ़ें, हमारे गम, मुसीबतें, ये क्या, हमारे तो गुनाह भी बहुत छोटे हैं उसकी रहमत के आगे, अगर दिल आज बिगड़े हुए हैं तो इसकी इसलाह अल्लाह कर देगा, आज ऐप है हमारे अंदर छुपाने का, वो अल्लाह मेरे ऐप छुपा दीजिए। अल्लाह दुनिया में भी ना रखना और आखिरत में भी ना खोलना। ए अल्लाह दुनिया में भी पाक साफ कर दे, आखिरत में कर दीजिए। एक सेकंड लगता है जैसे वो एक कलम फिरता है कंप्यूटर पे देखा करे, एक क्लिक सब जीरो। अल्लाह कर सकता है। और फिर एक और जुमला ले लीजिए, हमने तुम्हें फतेह मुबीन अता की, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सिर्फ फत का पहला ही जुमला है। मुराद तुम्हें हिदायत दी, मुंतखब किया, तुम्हारी हिफाजत की, गलबा अता किया, मदद की, इकराम किया और हर आजमाइश में सुर्ख रू कर दिया। अल्लाह हमारे लिए भी ऐसे ही करना। ऐ अल्लाह मरने से पहले फतेह मुबीन दे देना। जो जो काम तूने हमारे ज़िम्मे लगाया उसको आसान दर्जे पे करवा के जाने वाले और करने वाले बना दे। हमारी भी इज्जत करना और हमें भी आजमाइशों में सुर्ख रुई के साथ यानी कामयाबियों के साथ बाहर निकालना। एक और जुमला लिख लीजिए, अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा। जी वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। और याद रखिए जितने जुमले कुरान के बोल रही ना, ये मक्की दौर के हैं मोस्टली, चंद एक के सिवा। अल्लाह के नबी दुश्मनों के बीच में घिरे हुए थे, जान लेने के लिए लोग पीछे थे, ईमान तो दूर की बात थी उनके लिए। लेकिन आप देखिए अल्लाह तसल्लियाँ दे रहा है। ये वो सीक्रेट्स इस वक्त आपके सामने हैं जो अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर पूरे किए। लिहाजा कोई दुश्मन नुकसान ना पहुंचाएगा, कोई सरकश तुम पर पहुंच ना सकेगा, कोई हासिद तुम पर गालिब ना होगा, कोई दुश्मन मुसल्लत ना होगा और कोई जाबिर तुम पर जुल्म ना कर सकेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें भी लोगों के शर से बचाना और हमें नबी वाला ईमान अता फरमा। चले उस ईमान की कोई हल्की सी भिनक भी हमारे दिल में आ जाए, फिर कोई दुश्मन नुकसान नहीं देगा, कोई सरकश हमारे हाथ तक पहुंच नहीं सकता, कोई हासिद हम पर गालिब नहीं आएगा, कोई दुश्मन मुसल्लत ना होगा, कोई जाबिर हम पर जुल्म ना कर सकेगा। और फिर अल्लाह का फजल तुम पर अजीम था। ये भी कुरान में अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को कहा, सूरत निसा की आयतें। जब कुछ लोगों की तरफदारी करते करते रुक गए आप, तो तीन रुकू हैं अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के एक वाक्ये के, उस पर अल्लाह ने कहा था अल्लाह का फजल आप पर बड़ा अजीम है, यानी मैं आपको खाली नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने पैदा किया, रोज़ी दी, सिखाया, समझ दी, हिदायत दी, रास्ता दिखाया, अदब दिया, हिफाजत की, सरपरस्ती की और तुम्हारी खबरगीरी की। तो आप अल्लाह का फजल मांगा करें, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़दलिका। आपकी ज़िंदगी में तो गम का नाम ना रहे। और फिर आज की इस नशिस्त की आखिरी बात, जो भी नेमत है वो अल्लाह से मिलती है। शक्लो सूरत हो, रोज़ी हो, समाओ बसर हो, हिदायत और आफियत हो, पानी हो, हवा हो, गिजा हो, दवा हो, मकान हो और कपड़ा हो, सब कुछ अल्लाह ने दिया। तो इन चीज़ों को अल्लाह के नाम लगा दीजिए। अल्लाह ने आपको मुझे बहुत कुछ दिया, इस ज़िंदगी को उसके नाम लगा कर देखिए अल्लाह ताला आपके लिए कितने रास्ते खोलेगा। तो ये थे चंद सीक्रेट्स जो आज हमारे नसीब में थे। अल्लाह ताला से दुआ और आफियत की ख्वाहिश के साथ, अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो, बेहतरीन तरीके से काम ले ले हम सब से। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।